कि अपनी विभूतियों का आप वर्णन कीजिए, है ना। तो ये अध्याय जानते क्या है, इस अध्याय का नाम क्या है?
भगवान के ऐश्वर्य।
श्री भगवान का ऐश्वर्य मतलब विभूति योग। ये जो अध्याय है ये विभूति योग है, इसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है, है ना। तो अगर आप गिने विभूतियां तो 84 के लगभग हैं कुल मिलाकर के भगवान की विभूतियां। तो अब मैं प्रश्न करूंगा आपसे, इसमें भगवान ने जिन विभूतियों का वर्णन किया है कोई बताइए आप लोग, कौन सी विभूति आपको याद आ रही है? भगवान ने अपनी बहुत विभूतियां बताई नहीं इस अध्याय में? वृक्षों में पीपल, इसमें भगवान ने 84 विभूतियां बताई। मैं आपसे कह रहा हूं एक कोई बताओ। तो भगवान ने कहा है अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, 26वां श्लोक निकालिए, इसमें श्लोक संख्या 26 निकालिए। अभी चर्चा करेंगे इसी की, एक विभूति चर्चा करेंगे। अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। अश्वत्थ मतलब पीपल, सब वृक्षों में पीपल वृक्ष। पीपल की जानते क्या विशेषता है? हमने एक बार समाचार पत्र में पढ़ा था कि पीपल वृक्ष में 10 गुनी शक्ति होती है वायु को शुद्ध करने की, पीपल, इसलिए जो है ना लोग पीपल का पेड़ लगाते हैं। जबकि पीपल में वैसे और तो कोई गुण नहीं है, मतलब कोई फल तो नहीं होता है, फूल नहीं होता है।
पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं,
भूत भी पीपल के पेड़ पे रहते हैं। तो पीपल में बता रहे हैं कि पीपल की वृक्ष विशेषता यह है कि 24 घंटे ऑक्सीजन निकालता है पीपल का वृक्ष, और जबकि दूसरे जो वृक्ष होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, क्योंकि जब रात सूर्यास्त हो जाती है ना तो पेड़ों के नीचे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, तो पेड़ के नीचे सोना वैसे उतना अच्छा नहीं होता है। इन पीपल के पेड़ में 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है ना, तो हवा को शुद्ध करता है पीपल का वृक्ष। तो ये भगवान की विभूति है। कोई कहे कि पीपल के वृक्ष में ऐसा गुण कहां से आया, ये कृष्ण का है, क्योंकि कृष्ण परम पवित्र है, इसलिए कृष्ण की जो पवित्रता है वो उसके उसका ही एक अंश जो है ना पीपल के वृक्ष में है। अच्छा आप बोलो,
विभूति भी रहते हैं,
विभूति बताइए भगवान की और कोई विभूति? मंत्रों में ओम कहाँ है इसमें? है अक्षराणम अकारोस्मी,
भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, बस की बात है कि भगवान
नहीं, लेकिन यहाँ पर भगवान विभूतियां बता रहे हैं जिनके द्वारा ये इस जगत का पालन कर रहे हैं। अक्षराणम अकारोस्मी, अक्षरों में अकार, भगवान कहते हैं अक्षरों में मैं अकार हूँ। तो अक्षरों में आकार, इसकी क्या विशेषता है? आगे क्या विशेषता है? जितने भी अक्षर हैं उनमें आकार, आ की बड़ी विशेषता है, हर शब्द को उल्टा कर देगा। जैसे शुद्ध है, आ लगा दिया आपने, क्या हो गया? अशुद्ध। आ में बड़ी शक्ति है, आ लगा दो करता है, आ लगा दिया अकर्ता, है कि नहीं? और आ
है तो
बन जाए। प्रत्येक अक्षर में आ होता है, आकार तो होता है, हाँ प्रत्येक शब्द में आकार होता है, आ है ना। जैसे अंग्रेजी में ए होता है ना, तो बी ए सी ए जितने भी अक्षर बनते हैं ए लगाना पड़ता है उनमें, तो वो आकार जो ना सबसे ज्यादा आता है। अंग्रेजी शब्दों भी ए शब्द का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कि नहीं? कमल, अगर आपको कमल लिखना के ए एम ए एल ए, तो यही तो आया सबसे ज्यादा, है कि नहीं? तो वो जो आकार है यही सबसे ज्यादा आता है। अगर आप देखो अक्षरों की गिनती करो अंग्रेजी भाषा में भी, तो आप गिनती करोगे तो ए ही सबसे ज्यादा आएगा, कि नहीं?
सारे अक्षरों में ए
है, सब अक्षरों में ए है, है ना, ए ए सबसे ज्यादा आता है। और दूसरी विशेषता आकार की यह है कि कोई भी शब्द में आ लगा दो और वो उल्टा कर देगा, है कि नहीं? हाँ, और कोई विभूति बताइए। सर्पाणाम अश्मी वासुकी अनंत चात्म नागा नाम, नागों में अनंत और सर्पों में वासुकी, नागों में अनंत हैं भगवान, अनंत चात्म नागा नाम। ये 29वां श्लोक है, 29वां श्लोक निकालिए, जैसे भगवान कहते हैं अनंत चास्म नागा नाम, नागों में मैं अनंत हूं। तो नाग और सर्प कुछ अलग अलग हैं। 28वें श्लोक में अंत में भगवान का सर्पाणाम अस्मि वासुकी, 28वें के अंत में भगवान का है सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में वासुकी और नागों में अनंत, अंतर है क्या? सर्प और नाग में कुछ अंतर होगा, इसलिए अभी अभी चर्चा कर रहा हूं मैं। सर्पों में और नागों में कुछ अंतर है, इसलिए नाग जो ना मतलब कई फण वाले होते हैं, तो उन उन फण वाले जो है ना, जो नाग हैं उनमें अनंत है। क्या विशेषता है अनंत की? हजार मुख हैं उनके, हजार मुख हैं अनंत भगवान के, हजार मुख हैं, समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं। और अनंत नाम क्यों पड़ा उनका? गरुड़ जी ने एक बार उड़ान भरी उनके शरीर का अंत देखने के लिए, कितना बड़ा शरीर है, तो उनको भी अंत नहीं मिला, गरुड़ जी को भी अंत नहीं मिला, कितने कितना विस्तार है अनंत जी का शरीर, कितना बड़ा है, है ना। ये जो पूरा भूमंडल है तो उनके सिर में सरसों के दाने के बराबर है, मतलब हमें पता नहीं चलता। आपके सिर में सरसों का दाना डाल दिया जाए तो आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जैसे पूरा भूमंडल उनके सिर में जो है सरसों के दाने के बराबर है, अनंत। तो नागों में अनंत है। अच्छा, और कोई विभूति भगवान की? मृत्यु सर्वहरश्याम, ये देखिए, ये भगवान की विभूति क्या है? मृत्यु, ये मृत्यु जो है भगवान की विभूति है, क्या है? सर्वहरश्याम मृत्यु। हाँ? कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ छीनता है ना, तो कुछ छीन लेता है, कोई कपड़े छीन सकता है, कोई आपके धन संपत्ति छीन सकता है, कोई जमीन छीन सकता है, लेकिन मृत्यु क्या छीनता है? सब कुछ छीन लेता है, है कि नहीं? मृत्यु के साथ में सब कुछ छीन जाता है, आपका जो है शरीर छीन लेता है, और शरीर के साथ साथ पत्नी पुत्र जमीन घर मकान सब छीन लेता है, जीवन भर जितना किया है सब छीन लेता है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब कुछ छीन लेता हूँ मृत्यु के रूप में। श्लोक संख्या 34 निकालिए। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, तो मृत्यु जो है ना सब कुछ छीनने वालों में मृत्यु। आप सोचो इससे बढ़कर के कोई छीनने वाला है? कोई मृत्यु के, मृत्यु से बढ़कर के और कोई है जो छीनने वाला हो किसी का? और कोई नहीं छीन सकता। घर छीन लेगा कोई, है कि नहीं? आपकी दुकान छीन लेगा, आपका है ना बैंक बैलेंस मान लो छीन ले कोई, कुछ करे, ये मौत जैसा छीनने वाला कोई नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं वो मौत में हूं जो सब कुछ छीन लेता है। मृत्यु सर्वहरश्चाम और उद्भवश्चा भविष्यताम, उद्भवश्चा भविष्यताम, इसका मतलब क्या है? जन्म भविष्यताम, उद्भवश्चा भविष्यताम, मतलब देने वालों में सब कुछ दे देते हैं, भगवान किसी को भी किसी घर के घर में पैदा कर दें तो अपने आप लखपति करोड़पति बन जाता है वो जन्म दे करके, बिना कुछ किए हैं करोड़पति के घर में पैदा हो गया और वो करोड़पति बना दिया भगवान ने उसको बिना कुछ किए। तो इस प्रकार से देने वालों में मैं हूं, जन्म दे करके भगवान जो है किसी को कुछ भी दे सकते हैं और मृत्यु के रूप में सब कुछ छीन सकते हैं और जन्म के द्वारा सब कुछ दे सकते हैं। उद्भवस्य भविष्यताम और घोड़ों में उच्च श्रवा, हाँ उच्च श्रवसम अश्वानाम विधि माम अमृतोद्भवम। ये कौन सा श्लोक है? उच्च श्रवसम अश्वानाम सत्ताईस, इस श्लोक संख्या 27 निकाली है। उच्च श्रवसम अश्वानाम विधि माम अमृतोद्भवम, घोड़ों में मुझको उच्च श्रवा जानो जो अमृत से उत्पन्न हुआ, उच्च श्रवा अमृत के साथ पैदा हुआ घोड़ों में। उच्च श्रवा की विशेषता यह है सब घोड़ों में उच्च श्रवा श्रेष्ठ है, अमृत के साथ पैदा हुआ। आप जानते हैं उच्च श्रवा जब समुद्र मंथन से पैदा हुआ था तो किसने लिया था उसको? बलि महाराज ने लिया, बलि महाराज ने उच्च श्रवा नाम का घोड़ा लिया था। तो इसकी विशेषता है। और हाथी में ऐरावत, हाँ ऐरावतम गजेंद्राणाम, ऐरावतम गजेंद्राणाम श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत है भगवान। ऐरावत की चार सूण है, ऐरावत को किसने लिया था? इंद्र ने लिया था। और कभी नाम उसना, कभी नाम माने विद्वानों में उसना, ये निकालिए कौन सा है ये श्लोक। कभी नाम उसना कभी, कभी नाम उसना कभी, विष्णु नाम वासुदेव अस्मि, हाँ 37 में श्लोक, श्लोक संख्या 37 निकाली। इसमें भगवान कहते हैं विष्णु नाम वासुदेव अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम पे हम व्यास था कवि नाम उसना कवि। तो कवियों में उसना शुक्राचार्य विचारक, बहुत बड़े विचारक हैं शुक्राचार्य। इनकी जो चिंतन शक्ति विचार शक्ति है इसका पता चलता है जब भगवान वामन देव आए बलि महाराज की यज्ञ में, तो शुक्राचार्य की विचार शक्ति बहुत बहुत तेज, कोई नहीं समझ सकता था भगवान वामन देव के कार्य को। और भगवान गीता में कहते भी हैं कि भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता, भक्तिया माम अभिजानाती आवान निश्चासमी तत्वता, भक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति तत्व से जानता है। लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य इतने इतने विद्वान हैं कि भक्ति के बिना भी जो है भगवान को जान गए, ये भी भगवान की एक विभूति है। वो है असुरों के गुरु हैं, लेकिन विचार शक्ति से वो जान गए कि ये विष्णु है और ये तुम्हारा सब कुछ जो है ना भगवान की पोल खोल दी उन्होंने कि किस लिए आए, इंद्र को दे देंगे तुम्हारा सब जितना भी छीन करके इंद्र को दे देंगे। तुम मूर्खो, तुम इनको एक भी तिनका मत कहो देने के लिए, मतलब भगवान की चालाकी को इतनी गहराई से जान गए कि इतने चालाक हैं ये कि तुमने अगर एक तिनका भी कहा देने के लिए उसमें भी चालाकी करेंगे, वो तुम्हारा सबको ले लेंगे, बहुत चालाक है। ये विष्णु बहुत चालाक है ना। अब इतनी चालाकी भगवान की कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता, भक्त जान सकता है। लेकिन शुक्राचार्य भक्त नहीं है, असुर है, असुरों के गुरु हैं। तो बहुत बड़े असुर हैं, असुरों के गुरु, लेकिन इतने विचारक हैं, इतने विचारक हैं कि विचार शक्ति से जान गए, कोई नहीं जान सकता, है ना। तो वही भगवान की विभूति है, कहां से है इतनी शक्ति जानने की, है ना। इस प्रकार से जो है तो कोई व्यक्ति भक्त ना होते हुए भगवान को अगर जान ले तो वो एक ही हो सकता है, वो कौन है? शुक्राचार्य। आप अगर जाना चाहते हो तो भक्त बनना पड़ेगा, आप नहीं बन सकते शुक्राचार्य, ठीक है। वही महान विभूति है शुक्राचार्य, भक्त नहीं है, असुर है, भगवान को जान गए। कहते हैं मूर्ख तो सोचता है कि इनको तो इनको तीन पग भूमि दे देगा। अरे तीन पग क्या, दो पगों में तेरा सब कुछ नप जाएगा, खत्म हो जाएगा, तीसरा पग तुम दे नहीं पाएगा। तो इस तरह से शुक्राचार्य ने बलि को डांटा। तो हालांकि बलि ने त्याग कर दिया शुक्राचार्य का, वो दूसरी बात है, लेकिन शुक्राचार्य की विचार शक्ति तो देखो कि कितनी विचार शक्ति, जो कि भगवान की योजना को भी समझ गए। भगवान की योजना को कौन समझ सकता है, वो क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं जान सकते। सब कुछ बता दिया, भंडा फोड़ कर दिया भगवान के छल कपट जितना भी था सब सामने ने कर दिया कि ये ऐसे कपटी हैं, इतने छलिया हैं, समझ लो तुम इनको। लेकिन भगवान ने अपनी बातों से इतना बलि को जो है ना तैयार कर दिया था, मतलब मक्खन लगा दिया था कि बलि विचलित नहीं हुए शुक्राचार्य से, नहीं मैं दूंगा, चाहे वो चाहे सब कुछ चला जाए मेरा, लेकिन मैं इनको दूंगा। भगवान की आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा कि भगवान की सब चालाकी बताने के बावजूद भी भगवान का इतना आकर्षण, बलि जो है इतना आकर्षित हुए भगवान पर, बोले ठीक है हमारा सब कुछ बिक जाए, चाहे मुझे सिर देने पड़े अपना, लेकिन इनको संतुष्ट करना ही है बस, और कुछ नहीं है। और कोई विभूति बताइए। माता नाम मार्ग शीर्ष, ये कौन सा महीना चल रहा है? मार्ग शीर्ष अग्रहायण, ये महीना जो है अगहन का है। माता नाम मार्ग शीर्ष, कौन सा श्लोक है निकालिए। मासाना मार्ग शीर सोहम, मासाना ये 35वां श्लोक है। बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम हम, मासाना मार्ग शीर सोहम ऋतु नाम कुसुमा करा। महीनों में मार्ग शीर्ष महीना, ये महीना अगहन का सबसे श्रेष्ठ है महीनों में। क्यों, क्या विशेषता है? भगवान बांधे गए नहीं, वो तो पिछला महीना कार्तिक का था, वो कार्तिक का महीना था, दामोदर मास है, लेकिन ये केशव मास है, ये केशव मास कहलाता है अग्रहायण। इसी महीने में भगवान गीता का उपदेश कर रहे हैं, ये वही महीना है जिसमें भगवान ने गीता का उपदेश किया। इसी महीने में जो है जो एकादशी होगी ना, वो कौन सा कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वो कृष्ण पक्ष की एकादशी, अग्रहायण की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस दिन भगवान का गीता का उपदेश हुआ इसमें। और क्या विशेषता है इसकी, अग्रहायण मार्ग शीर्ष महीने की? दीपावली तो कार्तिक में है, अभी भूल जाओ दीपावली, सब कार्तिक में निकल गया। कार्तिक के बाद अगला महीना है अग्रहायण का मार्ग शीर्ष, ये चल रहा है। हाँ किसान जो है इनकी इनकी इनके शब्द कोई समझ नहीं पाएगा, ये बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, कोई नहीं समझ पाएगा। किसान जो है अनाज काटते हैं इस महीने में, किसान अनाज काटते हैं। और क्या विशेषता है इस महीने की?
बहुत अच्छा रहता है,
इसमें जो है कात्यायनी का व्रत किया गोपियों ने, कात्यायनी व्रत शुरू हुआ एक महीने के लिए, 19 दिसंबर तक ये कात्यायनी व्रत चलेगा। कार्तिक के बाद जो है कात्यायनी व्रत शुरू किया गोपियों ने। कात्यायनी व्रत क्या होता है बताओ, क्या होता है कात्यायनी व्रत क्या होता है?
राधा माता ने भगवान कृष्ण के लिए
कात्यायनी की पूजा की। कात्यायनी देवी भगवान ने जो है जब योग माया को आदेश दिया था कि देवकी के सातवें गर्भ जो बलराम जी हैं उनको रोहिणी के उदर में खींचो, खींच के डाल दो संकर्षण भगवान को, तो इतने छोटे से काम के लिए भगवान ने कितना बड़ा पुरस्कार दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पूजा होगी, मनुष्य लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करोगी मनुष्यों की, और तुम्हारे कई नाम प्रसिद्ध होंगे, कई नामों से प्रसिद्ध होगी तुम, है ना।
तो यहाँ से बता
दो। हाँ, तो इसमें जो है ये कात्यायनी नाम भी है उस महामाया का, और जो गोपियां हैं हेमंते प्रथमे मासी नंद विजय कुमारी का, हेमंत का प्रथम महीना है, हेमंत का ही पहला महीना है मार्गशीर्ष। तो इसमें जो है चेरुर भविष्यम भुंजाना कात्यायनी नरचन व्रतम, कात्यायनी के पूजा का व्रत उन्होंने लिया है? और किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपै सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। क्या कहते हैं, हे कात्यायनी, हे महामाया, कात्यायनी महायोगिनी और अधीश्वरी, तुम नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाओ, तुम इनको नमस्कार कर रहे हैं हम। इस प्रकार से उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया है ना। तो इसी महीने में भगवान ने फिर उनकी कामना पूर्ण की और भगवान ने उनका चीरहरण किया गोपियों का। तो ये जो महीना है ये बहुत पवित्र है, मासा नाम मार्ग से, और ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में कुसुमाकर, कुसुमाकर मतलब बसंत ऋतु, ऋतु में बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु की क्या विशेषता है, फूल खिलते हैं, हाँ सब प्रकार के फूल खिलते हैं बसंत ऋतु में, है
मौसम एक जैसा रहता है।
हाँ, बसंत ऋतु की विशेषता यह है कि ना गर्मी ना सर्दी, मतलब भगवान के धाम में हमेशा बसंत ऋतु रहती है, वैकुंठ की ऋतु है यह। ये ऋतु वास्तव में आध्यात्मिक जगत की है, आध्यात्मिक जगत में ना तो गर्मी है ना जाड़ा है, तो बसंत ऋतु है, हर प्रकार के खूब फूल खिलते हैं, हर समय फूल खिलते हैं, हमेशा बसंत ऋतु रहती है भगवान के धाम में। भगवान के धाम में ना तो गर्मी है ना सर्दी है, ना आपको हीटर की जरूरत है ना कूलर की जरूरत है, बसंत ऋतु है भगवान के धाम में। तो ये भगवान की विभूति है। अच्छा, आपका प्रश्न, हाँ इनका प्रश्न है कि भगवान की अवस्था तो हमेशा 15 साल 9 महीना 7.5 दिन की होती है। भगवान जब बड़े होते हैं तो जो है शिशु अवस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, इस तरह से बढ़ती जाती है। ये 15 साल 9 महीना 7.5 दिन में फिर बस नवयौवन, 15 साल 9 महीना 7.5 दिन नवयौवन, उसके आगे फिर दाढ़ी मूंछ नहीं निकलती होंगी, किशोर अवस्था नवयौवन अवस्था भगवान की हमेशा रहती है। उसके आगे फिर ना तो बूढ़े होते हैं ना जो है ना, मतलब आगे अवस्था बढ़ती नहीं, दाढ़ी मूंछ नहीं होती भगवान की, है ना। तो इनका कहना है कि जब भगवान गीता का उपदेश कर रहे थे तो 75 साल की अवस्था में भी वो तो 15 साल 9 महीने 7.5 दिन के ही थे, भगवान तो उतने ही थे, है ना। तो अर्जुन क्या बूढ़े हो गए थे? हाँ, अर्जुन बूढ़े तो नहीं, अर्जुन बूढ़े नहीं है, क्योंकि द्वापर युग में भी आप जानते हैं, हे हरि बोल, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तुम जो ना इधर तो ऐसे नहीं सुना जाता है, इधर उधर बातें कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, सुनने की विधि नहीं है। तो हाँ, द्वापर युग में व्यक्ति की सामान्य आयु जानते कितनी है? 1000 साल होती है। तो 75 साल क्या है, ज्यादा है? 75 साल भी जवान है, अर्जुन जवान है, 75 साल के जवान है। अभी आजकल 75 साल का जवान कहे तो अरे दिमाग खराब हो गया है, 75 साल का जवान हो सकता है कोई? 75 साल कोई ज्यादा नहीं थी। भीष्म पितामह थे वृद्ध, तो उनकी कई 100 साल की उम्र थी, भीष्म पितामह की वृद्ध थे वो। तो हजार साल में 75 साल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न?
भगवान श्री कृष्ण तो 125 साल धरती पर रहे थे द्वापर में।
हाँ, 125 साल, 125 साल तक रहे भगवान, है ना। और जब गीता का उपदेश दे रहे हैं उसमें 75 साल के हैं, ठीक है। अर्जुन भी 75 साल के हैं, या कुछ शास्त्रों के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद 36 साल तक भगवान रहे पृथ्वी में, तो 125 में 36 घटाइए कितना हुआ?
125
में 36 घटाओ, 36 125 में, आप तो व्यापारी हो, कैसे आप गलत कर? 125 में 36 घटाए तो 89 साल, तो कृष्ण 89 साल के, क्योंकि 36 साल के बाद यदुवंश का संहार हुआ, तो भगवान ने लीला समाप्त की, तो 36 साल तक और मतलब रहे भगवान।
जैसे भगवान भागवतम में कहते हैं कि मैं जिस पर दया करता हूँ उसका सर्वस्व छीन लेता हूँ, सर्वस्व का मतलब सब कुछ
ना,
ये दया ही है।
कौन सी? नहीं, ये जरूरी नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे हम अनुग्रहणामी हरिष्य तद धनम सने, तो उसका धन का मतलब क्या है समझो, धन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो धन संपत्ति ही हो, धन नहीं, हाँ मतलब वो चीज जो भक्ति में बाधा डाले, वो चीज जो भक्ति में बाधा डाले उसको मैं हरण कर लेता हूँ, धन का मतलब ये है। जो कृष्ण की भक्ति के विरुद्ध मतलब जो है, जो आपकी भक्ति में बाधा डाल रहा है वो धन कहलाता है। तो धन हो सकता है कुछ, कोई भी चीज हो सकती है धन, है ना।
इंद्र देवता वो बोलते हैं ना, वो मांग के दे दिया बाली मारा के, तो वो मान का वो छीन लिया उनका, धन तो दे दिया लेकिन मान छीन लिया उनका,
इंद्र का। हाँ हाँ, जैसे इंद्र का, इंद्र को जो है बलि से छीन करके राज्य तो दे दिया, लेकिन इंद्र का घमंड समाप्त हो गया, है ना। इंद्र को ऐश्वर्य तो दे दिया, तीनों लोगों का राज्य दे दिया, बलि से छीन करके दिया, तो इंद्र का जो है वो घमंड समाप्त हो गया, क्योंकि बलि से युद्ध तो नहीं कर पाए। अब इंद्र को भी बड़ी शर्म आई है कि मुझको जो है छीन करके दिया है, मतलब बलि को मारा नहीं, युद्ध नहीं किया, है ना। तो आप भी नीचे हो गए बलि के, आपने मांगा बलि से और मुझे दिया, तो क्या इज्जत रही मेरी? तो इस प्रकार से इंद्र की इज्जत भी घटा दी, उसको इंद्र का पद भी दे दिया, उसकी इज्जत भी घटा दी। बलि को कहने के लिए मौका मिल गया कि हिम्मत थी तुम्हारी लड़ाई करने की, लड़ तो पाए नहीं, मांग करके लिया, हेलो मांग करके मैंने दिया। तो इंद्र की इज्जत खत्म कर दी, इंद्र को पद दे दिया, लो इंद्र का पद ले लो, लेकिन जीवन भर के लिए शर्मिंदा हो गया आपका प्रश्न। कात्यायनी व्रत हमने तो मंगल आरती में अनाउंस किया था, कार्तिक व्रत के बाद कात्यायनी व्रत आता है, तो हम कोई अलग से नियम नहीं बताते हैं। रोज के जो नियम है उनमें से आप कुछ भी नियम बना लो, रोज मंगल आरती में बैठने का, नहीं मंगल आरती में आने का, या भागवतम क्लास में बैठने का, या गीता क्लास में बैठने का, आप कुछ नियम इस तरह के बना लो, जो भी अपनी सुविधा के अनुसार हो। श्रवण कीर्तन के भागवत का एक अध्याय पढ़ो, इस तरह का ही, ठीक है ना। तो बाकी कोई जरूरत नहीं है विशेष नियम की।
गुरुजी कृष्ण की पूजा के बाद कोई पूजा रहती है तो फिर वो
नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बहुत से नियम हैं जो कि आप कोई भी आप कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप नियम बना सकते हो, श्रवण कीर्तन का आप नियम बना सकते हो, कई प्रकार के नियम है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि एक टाइम भोजन करो, मतलब अगर उसमें भक्ति में बाधा पड़े तो ऐसे नियम नहीं जिसमें कि भक्ति में बाधा पड़े, लेकिन भक्ति में सहायता हो ऐसे बहुत से नियम है जो भक्ति में सहायक होते हैं, तो आप वो नियम कर सकते हो। एक टाइम भोजन करने से अगर भक्ति में सहायता मिले तो आप करो, लेकिन वो सबके लिए नहीं है, सबके लिए वो ऐसा नहीं होता है। आपका प्रश्न
कहा जाता है भगवान की